दिन भर 14 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूँ रेहान फदल। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के मरने के विरोध में योगी सरकार पर विपक्ष का हमला और विरोध प्रदर्शन। पार्टीशन सीरीज के अंतर्गत बताएंगे एक ऐसी मस्जिद के बारे में जिसकी देखभाल सिख लोग करते हैं।
गुरु नानक साहब जी ने जो उनका सिद्धांत था वही छेवें पातशाह जी का सिद्धांत रहा और उस सिद्धांत के मुताबिक ही छेवें पातशाह जी ने धर्म अपनाउंदिया होया मुसलमान वीरां वास्ते ये मसीत बना के दी। साहबा ने
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इस मामले में जांच का ऐलान किया हुआ है और जांच का नतीजा आते ही उसकी आ जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया के परमाणु विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की अपील की है। राष्ट्रपति मून ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति और जिम्मेदारी के साथ कदम उठाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में एक और युद्ध नहीं होना चाहिए। अमरीकी जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने राष्ट्रपति मून को बताया कि उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन अमरीका की प्राथमिकता है, लेकिन अगर ये उपाय काम नहीं आते तो अमरीका सैन्य विकल्प आजमाने की भी तैयारी कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि व्यापार और उत्तर कोरिया के मुद्दे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज एक बयान जारी करने की संभावना है जिसमें चीन के कथित तौर पर अनुचित व्यापारिक तरीकों की निगरानी का आदेश दिया जा सकता है। चीनी प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग ने कहा, जहां तक आपका सवाल है कि क्या व्यापारिक मुद्दे को उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे से जोड़ा जाना चाहिए, हमारा जोर देकर कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच साझेदारी एक दूसरे के प्रमुख हितों और चिंताओं का सम्मान करते हुए होनी चाहिए। कोरियाई प्रायद्वीप का मुद्दा और व्यापार का मुद्दा अलग अलग खांचे में आते हैं। एक मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए दबाव बनाना ठीक नहीं है। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश सियेरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन के करीब भूस्खलन होने से कई लोग अपने घरों में ही दब गए। रिपोर्टों के मुताबिक मलबे से कई लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। एक महिला ने बीबीसी को बताया कि उनके परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। देश के उपराष्ट्रपति विक्टर फो ने मौके का दौरा करने के बाद कहा कि हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत होने की आशंका है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि कई बस्तियों तक पहुंच नहीं हो पा रही है, इससे नुकसान और प्रभावित लोगों के बारे में सही तौर पर जानकारी नहीं मिल सकी है। नेपाल के मशहूर चितवन नेशनल पार्क में फंसी सैकड़ों पर्यटकों को हाथियों की मदद से बाहर निकाला गया। नेशनल पार्क के कर्मचारी ने बताया, बाहर निकाले गए लोगों में 200 भारतीय, 200 नेपाली नागरिक और 200 अन्य देशों के नागरिक हैं। फिलहाल हम हाथियों और नौकाओं की मदद से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जब पानी घटेगा तो हम लोगों को बाहर निकालने के लिए वाहनों का भी इस्तेमाल करेंगे। ये थे नेशनल पार्क के कर्मचारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रोच मार्क कोबेरे ने देश की राजधानी वागाडुगू में हुए हमले की निंदा की है। इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हमला करने वाले 2 लोगों की भी मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से नियुक्त जांच कमेटी ने जांच का काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच इंसेफेलाइटिस बोर्ड में बच्चों के मरने का सिलसिला थमा नहीं है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गोरखपुर पहुंचे। पूरे ब्यूरो के साथ समीर आत्मज मिश्र।
मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में हुई बच्चों की मौत के कारणों पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन इंसेफेलाइटिस वार्ड में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। गोरखपुर में जांच टीम के सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है, तो लखनऊ और गोरखपुर समेत राज्य के तमाम हिस्सों में इस घटना को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर में आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई पार्टियों ने बंद का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन किया। इस बीच जांच टीम के सदस्यों ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन न सिर्फ पत्रकारों को बल्कि जांच टीम के सदस्यों को भी आंकड़ों को जुटाने में पसीने बहाने पड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन छोटी मोटी जानकारियों को देने में भी हीला हवाली कर रहा है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को वीआईपी मूवमेंट यानी नेताओं के आने का सिलसिला तो थमा रहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोरखपुर में कुछ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
बड़ी संख्या में बच्चों की जान गई, इसलिए हमारा मानना है सरकार को काम काज करना चाहिए। जिसलिए जनता ने भेजा है चुन करके, गरीब जनता की सेवा के लिए सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे रही है।
अखिलेश यादव ने परिजनों को मदद का आश्वासन दिया और राज्य सरकार से जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं बीएसपी नेता मायावती ने सरकार की ओर से नाउम्मीदी जाहिर करते हुए भी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है।
जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनकी पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि वैसे बीजेपी का स्वभाव गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की घोर आपराधिक लापरवाही के लिए विभागीय मंत्री को बर्खास्त करने का मामला मैं मुख्यमंत्री के विवेक पर ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझती हूँ।
बहरहाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दौरे के बाद से अधिकारियों में हरकत जरूर दिखी। इंसेफेलाइटिस वार्ड की गुणवत्ता में भी कुछ सुधार दिखा, लेकिन मरीजों के परिजनों से बात करने और वहां घूमने पर यही लगा कि दूसरे वार्डों समेत अस्पताल के बाकी हिस्सों की स्थिति जस की तस है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी गोरखपुर।
गोरखपुर के बाबा राघोदास अस्पताल के जिस आईसीयू में दर्जनों बच्चों की मौत हुई थी, वहां पर नए मरीजों का आना जारी है। कई मरीज अभी भी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव ने आज उसी आईसीयू का दौरा किया।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मैं दाखिल हो रहा हूं 100 नंबर वार्ड में। घुसने पर बाएं हाथ मेरे एक दवा वितरण केंद्र है। इस पर साफ लिखा है केवल मस्तिष्क ज्वर मरीजों की दवा मिलती है, और इस लाइन में मुझे कम से कम एक दो तीन लोग दिख रहे हैं। ये सिर्फ मस्तिष्क ज्वर की दवाई मिलती है, आप क्या दवाई लेने आएंगे? कहाँ से आएंगे?
बैजनाथपुर से। बैजनाथपुर से।
किसको किसको मस्तिष्क ज्वर है? ये बच्चा जो आपकी गोद में है,
जी
कितना
हाँ,
बड़ा है?
3 साल का है।
3 साल का है। इलाज हो चुका है पहले या होगा?
जी हाँ, इलाज हुआ था, भर्ती था।
अब बात की दवाई लेने
आया? हाँ, दवाई जी।
लोग कम से कम मेरे आसपास 45 से 50 लोग होंगे। महिलाएं बैठी हुई हैं, कुछ सो रही हैं। ज्यादातर लोगों के पास चटाई है, अपने बर्तन हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि खाना खुद बनाते हैं। खुद बाहर एक नल हमें मिला था अभी, जहाँ पर लोग अपने बर्तन खुद धो भी रहे थे। अब हम दाखिल हो रहे हैं अंदर। इसमें लिखा हुआ है वेल बेबी क्लिनिक नवजात शिशु 32 ओपीडी है यहाँ पर, और अंदर चिकित्सक कक्ष है, काफी डॉक्टर्स हैं, औषधि भंडार लिखा हुआ है। अब हम आ रहे हैं पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड 100A। ये वही आईसीयू है जहां पर पिछले एक हफ्ते में 60 से ज़्यादा बच्चों की मौतें हुई हैं। सघन चिकित्सा कक्ष लिखा हुआ है अंदर। इस वक्त यहां काफ़ी भीड़ है डॉक्टरों की, एकाएक हर बेड पे कम से कम एक या कुछ पर दो बच्चे भी देख सकते हैं साफ साफ। और ज़्यादातर बच्चे यहां पर नवजात हैं, तो यहां पर ज़्यादातर वे माएँ जो हैं वो बच्चों को गोद में लेकर बेड पर लेटी हुई हैं। तो दरअसल बच्चों को पकड़ कर ज़्यादातर के नाकों में, मुँह में तरह तरह की नलियाँ लगी हुई हैं, ज़्यादातर को ऑक्सीजन दी जा रही है। और ये वही एरिया एरिया है जिसके पास में कुछ दिन पहले करीब 48 घंटों के दौरान 30 बच्चों से ज़्यादा ने जो है दम तोड़ दिया था। लोग चप्पल उतार के अंदर जा रहे हैं, नर्सेज हैं अंदर, माएँ हैं। बहुत अफसोसनाक हाल है क्योंकि जिस तरह के लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं इस ICU में, वो देख के बता रहा है कि बहुत दूर दराज से आए हैं। ज़्यादातर के बेड्स के पास में बैग है, कुछ लोगों के बेड के पास में मैं देख रहा हूँ तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं, दवाइयों के बंडल हैं। अभी 10 मिनट पहले हमें किसी ने बताया है यहाँ कि आज एक बच्चे ने अभी दम तोड़ा है, नवजात था वो भी। और यहाँ पर बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं। आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, क्या हो रहा है, आप कैसे बैठे हैं यहाँ पर नीचे ज़मीन पर?
नहीं, मेडिकल में पेशेंट है, उसी को देख रहे हैं।
बच्ची है। अंदर ICU में?
हाँ, अंदर ICU।
कितनी बड़ी है?
17 महीने की।
कितने दिन से लाए?
2 दिन हो गया।
डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
डॉक्टर अभी कुछ नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट चल रहा है।
ऑक्सीजन भी दे रहे हैं?
नहीं, ऑक्सीजन नहीं दे।
मुझे डॉक्टर्स दिख रहे हैं करीब करीब हर बेड के आसपास, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं बहुत ज़्यादा। यकीन नहीं हो रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले इतने सारे बच्चों ने एक साथ दम तोड़ा है। डॉक्टर्स भी अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप साफ़ सफाई की बात मुझसे पूछिए तो ये मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है। आज कल भी मैं आया था यहाँ पर, सफाई थी, लेकिन इसके आसपास के इलाके में हमेशा दुर्गंध फैली रहती है, आसपास गंदगी जमा है। कल रात को गोरखपुर में बारिश हुई है, काफ़ी बारिश का पानी भी जमा है और मंजर ICU का यही है। लेकिन अभी तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहाँ पर हालात वो काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसेफेलाइटिस के मरीज़ों की तादाद और ज़्यादा आती जा रही है। हमें अब से 10 मिनट पहले किसी ने बताया कि कुल बच्चे जिनका इलाज चल रहा है अंदर यहाँ ICU के आसपास, उनकी संख्या 71 है और उसमें से काफ़ी ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। नितिन श्रीवास्तव, BBC गोरखपुर।
गोरखपुर के ही रहने वाले ब्रह्मदेव यादव के 2 जुड़वां बच्चे भी इस दुर्घटना के शिकार हो गए थे। महज 1 हफ्ते की उम्र के एक बेटे और एक बेटी को खोने के बाद उनके परिवार पर मानो वज्रपात हो गया है। हमारे सहयोगी समीरा आत्मज मिश्र ब्रह्मदेव यादव के घर पहुंचे और इस बारे में उन लोगों से बात की।
गोरखपुर शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर है ये बाघा गाड़ा गाँव और यहाँ ब्रह्मदेव यादव जी का घर है। ब्रह्मदेव यादव उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने पिछले दिनों गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है। और ब्रह्मदेव जी हमारे साथ हैं, उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं। ब्रह्मदेव जी, सबसे पहले तो हम ये बताइए हमें कि क्या हुआ था बच्चों को, कैसे हुआ, पूरी कहानी।
मेरी बेटी को हल्का सा बुखार था, मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त था। किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने गए, उसने बोले कि देखो आपका खर्च यहाँ पर ज़्यादा आएगा, 8,000 एक दिन का पड़ेगा। तो हम कहे कि हल्का सा बुखार है, लाओ हम मेडिकल में एक बार दिखा दे ले जाके। जो व्यवस्था यहाँ पर वही व्यवस्था वहाँ पर भी है, तो हमने वहाँ पर ले जाके दिखाया, वो सब एडमिट कर लिए। एक बार उन्हें बताया कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है।
दोनों बच्चे कहाँ पैदा हुए?
जुड़वा बच्चे हुए थे सदर हॉस्पिटल में, हुए थे महिला वाले में। दोनों बच्चे नॉर्मल से हुए, कोई दिक्कत नहीं था। एडमिट करने बाद जैसे भी हम पूछते थे कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो कुछ बताते नहीं थे, सिर्फ दवा बाहर से मंगाते थे और रोज ब्लड 2-3 ब्लड प्रतिदिन निकालते थे।
बच्चे कितने दिन वहाँ एडमिट थे?
1 हफ्ता सर।
और पैदा होने कितने दिन बाद आप ले गए?
बस 1 दिन बाद ले गए थे। 1 तारीख हुआ, 2 से 3 तारीख हम शायद एडमिट करा थे, कागज रखे हुए सर।
अच्छा अच्छा, तो डॉक्टरों ने क्या बताया कि किस वजह से बच्चों?
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हम गए पूछने, वो बोले कि आपका बेटा एक डेथ हो गया है। हम पूछे क्यों, कैसे? कहे ऊपर वाले की मर्जी।
तो आपने किसी से जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या हुआ? और भी लोग वहाँ मौजूद थे, और भी पेशेंट थे वहाँ पे
बहुत पेशेंट थे, लेकिन सबका बच्चे एक एक लोग के मरे हुए, तो सब लोग रो रहे थे, हम भी लगे रोने। वहाँ से लेके चले आए, सर्टिफिकेट भी नहीं वहाँ पे एक लिए हम।
और लोगों के बच्चों क्या बता रहे थे कि उनको क्या दिक्कत है? ये जो ऑक्सीजन की बात आप बता रहे हैं, ये और लोगों को ही बताया गया क्या?
ऑक्सीजन की कमी तो किसी को नहीं बताया गया, हमको भी नहीं बताया गया। हाँ। जब हम वहाँ की दिक्कतें देख रहे हैं कि सबके हाथ में बह गए, तब हमको लगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। हाँ। क्योंकि जब हम गए अपनी बच्ची को मतलब लेने, तो देख रहे थे बच्ची के मुँह रास्ते ब्लड आ गया था, तो मुझे लगा कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था और घुट घुट के उद्दम तोड़ गई।
ब्रह्मदेव जी की पत्नी इन घटना के बाद से ही वो चली गई है मायके। यहाँ उनके परिवार के और लोग हैं, आप कौन हैं?
हम चाची।
आप इनकी ब्रह्मदेव की चाची?
8 साल बच्चे ना, मैंने बड़ा लड़का दवाई कैला है, तब जाके भगवान दिहला है कि दोनों दिहला है, आम ही मिली दोनों दिहला है।
यानी ये आप ये बता रहे हैं कि 8 साल के बाद इनके बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे और एक बेटी और एक बेटा हुआ है। आप ब्रह्मदेव की माँ हैं? हाँ। तो माता जी आप बताइए, आपके एक साथ इतनी बड़ी खुशी आई, फिर उसके बाद इतना
बहुत खुशी आई।
तो लड़का के जाके बोला कि सब बच्चे मर जाते हैं, चलो घरे ले चलो 7 तारीख के। तीन ही आई ना मंगला बच्चन के, हम गेट पर ठड़ा ली, हमको बच्चा नहीं क्यों दिया, रक्षाबंधन के दिए, तो वहाँ से हमरों के निकल आई। तो 9 तारीख की इनकर लड़का मर गया और 10 तारीख की लड़की मर गया। यही हमारा लड़का परेशान बाटी, हम लोग पहला बच्चा दोनों रहा। यही बात है, लड़का हमारा पागल हो गए, इनकर बीबी पगला के मायके चली गई।
ब्रह्मदेव यादव के जुड़वा बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। 1 हफ्ता हुआ था सिर्फ उनको पैदा हुए, अपने दोनों बच्चों को उन्होंने खोया। उनका कहना है कि 150 से 200 के बीच करीब वहाँ बच्चे एडमिट थे उस समय, और लगभग सभी को इसी तरह की दिक्कत थी, सभी नवजात शिशु थे। उनमें से कुछ उनके सामने, कुछ बच्चों की मौत हुई, कुछ उनके बाद हुई, कुछ बता रहे हैं उससे पहले भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारी चीज़ों की जाँच होगी। अब जाँच के बाद क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या पता चलेगा, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ब्रह्मदेव यादव के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर ये जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है वो शायद कोई नहीं लौटा पाएगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद संभालने के बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पहली बार देश को संबोधित किया है। हमारे साथ सलमान रावी स्टूडियो में हैं। सलमान, बताएं क्या कहा कोविंद जी ने।
देखिए, जैसे कि आपको पता है और हमारे श्रोताओं को भी पता है कि पिछली 25 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी बतौर राष्ट्रपति की, और ये फौरन उसके बाद ये उनकी जो उनकी राष्ट्र के नाम जो संबोधन था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबकी निगाहें उस पर लगी थी, सब ये जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति क्या बोलते हैं। और जैसा कि लोग समझ रहे थे, वो उन्होंने हालांकि ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रपति अमूमन वही बोलते हैं जो सरकार ड्राफ्ट करके देती है, वो अपनी बात नहीं कहते, लेकिन उनके भाषण में जवाहरलाल नेहरू का और B.R. अम्बेडकर का जिक्र था, और उन्होंने ये कहा कि कभी देश भुला नहीं सकता जो जवाहरलाल नेहरू ने और B.R. अम्बेडकर ने जो किया है और आज़ादी के लिए जो किया है। साथ साथ उनका जो फोकस था वो है 2022 में आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, और जो सरकार का न्यू इंडिया का लक्ष्य रखा गया है तब का, उस पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा।
न्यू इंडिया का अभिप्राय है कि हम जहां पर खड़े हैं वहां से आगे जाएं, तभी हम ऐसे न्यू इंडिया का निर्माण कर पाएंगे जिस पर हम सब गर्व कर सकें। ऐसा न्यू इंडिया जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमताओं का पूरी तरह विकास और उपयोग करने में इस प्रकार सक्षम हो कि हर भारतवासी सुखी रहे।
इसके अलावा अच्छा भाषण था, राष्ट्रपति का पहला भाषण था, उसमें उन्होंने जो बातें कहीं उसमें जो अभी मौजूदा माहौल है जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव न हो तभी संवेदनशील समाज जो है वो बन सकता है, और समाज को संवेदनशील ही बनना होगा और तभी हम तरक्की कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सलमान रावी आपका। BBC आजकल आपको बंटवारे से जुड़ी श्रृंखला सुनवा रहा है, उसी कड़ी में हम पेश कर रहे हैं उन जगहों की कहानियाँ जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे हैं। कैसी है उन लोगों की ज़िंदगी जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हैं? क्या महज दूसरी तरफ से चलने वाली गोलियाँ या हमले का डर ही उनकी एक मुश्किल है, या बंटवारे ने और अब बॉर्डर के करीब होने से उनके जीवन में दूसरे तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? आज की कड़ी में फैसल मोहम्मद अली बता रहे हैं कहानी उस मस्जिद की जिसका निर्माण एक सिख गुरु ने करवाया था और जिसकी हिफाजत निहंग सरदार करते हैं।
मेहराबों पर लिखी आयतों की लकीरें मध्यम हो गई हैं, टाइल्स पर कलमकारी से उकेरे गए बेल बूटों के रंग जगह जगह से उड़ गए हैं, मगर पास बने प्लास्टर और बिन प्लास्टर वाले घरों और पेड़ों के बीच से झांकते गुंबद इसके मस्जिद होने की गवाही साफ साफ देते हैं। वो मस्जिद जिसका बंटवारे के वक्त फैली वहशत के बावजूद बाल भी बांका ना हुआ और जिसकी हिफाजत अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाले निहंग सिख आधी सदी से ज्यादा से कर रहे हैं। हालांकि यहां से अब अजान की आवाज़ नहीं आती, हाँ पास के घर में जारी गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं। ४७ और उसके पास के साल जब हिंदू मुसलमान सिख मजहब के नाम पर लड़ रहे थे, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन बैठा था, जब मंदिर गुरुद्वारे और मस्जिद ढहाए जा रहे थे, निहंग सिखों के तरना दल के सरदार ने कहा गुरु की बनाई मस्जिद को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे मार डालेंगे, तब से मस्जिद उनकी देखरेख में है। हालांकि तब सीमा के पास बते शहर श्री हरगोबिंदपुर और पंजाब के दूसरे कई इलाके मुस्लिम आबादी से खाली हो गए थे। मस्जिद के अहाते में नीले कपड़े में बंधा 50 फुट लंबा पोल जिसके ऊपर दोधारी तलवार लटक रही है, इस बात का ऐलान है कि मस्जिद की सुरक्षा अब निहंगों के हाथ है। सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह ने जब 17वीं सदी में हरगोबिंदपुर बसाया तो शहर के मुस्लिमों के लिए इसकी तामीर करवाई। पिछले 35 सालों से मस्जिद की सेवा कर रहे बाबा बलवंत सिंह कहते हैं,
छठम पातशाह के पहले आने से इस गांव का नाम था रोहेला और ये जो इलाका है जलंधर सूबा उनके अधीन था और उनका नाम था भगवान दास किरण खत्री। उनके मुलाजम उनकी चौकी थी श्री इथे रोहेले नगर में, इसीलिए छठम पातशाह जी को वहां से आने को रोकता था और ज्यादा रोकने के बाद फिर छेवें पातशाह जी के साथ मारा गया। छेवें पातशाह जी ने मार दिया उनको ते उनका घर ढा के, क्योंकि गुरु नानक साहब जी जो थे ना उनका सिद्धांत है सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, ये सिद्धांत था। इसे सिद्धांत को प्रगटाते हुए छठों पातशाह जी ने मसीत की तमीर की।
लंबे कद काठी और छरहरे शरीर के मालिक बाबा बलवंत 10वीं पास करने के बाद ही यहाँ आ गए थे और तब से मस्जिद की देखभाल और सेवा करते हैं। उनके मुताबिक सिख धर्म का आधार ही सभी मजहबों की इज्जत करना है और यही पहले गुरु नानक की सीख है।
गुरु नानक साहब जी ने जो उनका सिद्धांत था वही छेवें पातशाह जी का सिद्धांत रहा और उस सिद्धांत के मुताबिक ही छेवें पातशाह जी ने धर्म अपनाउंदिया होया मुसलमान वीरां वास्ते ये मसीत बना के दी साहिबां ने।
गुरु हरगोबिंद महज 11 साल के थे जब उनके पिता और सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म से कत्ल कर दिया गया था और फिर श्री हरगोबिंद सिखों के छठवें गुरु बनाए गए। बाबा बलवंत सिंह के साथ मौजूद रणजोत सिंह कहते हैं,
क्योंकि हर एक जुल्म दे नाल लड़दे रहे, जुल्म दे नाल वो किसी मजहब दे नाल नहीं लड़े हरगोबिंद साहब जी, इस करके उन्होंने मरबला खूह भी जेड़ा पानी वास्ते बनवाया है।
मस्जिद के अहाते में तैयार नए हिस्से के कमरे में रहते हैं बाबा बलवंत सिंह। एक पुरानी रेफ्रिजरेटर, गल्ले की एक बोरी, कुछ बर्तन और भंग घोटने के सामान के साथ, और उनका ज्यादातर वक्त गुरु ग्रंथ साहब के पाठ, मस्जिद की सेवा और मस्जिद के दर्शन के लिए आने वालों की देखरेख में बीतता है। हालांकि गुरु की मस्जिद को देखने वालों का सिलसिला पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है, वरना साल 2000 तक तो हरगोबिंदपुर में ही पैदा और पले बढ़े आकाश नंदा जैसे लोगों तक को नहीं मालूम था कि वहाँ कोई मस्जिद भी है और वो भी इतनी ऐतिहासिक।
मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2000 सन में पता चला कि यहाँ पे मस्जिद है, तब यहाँ पे वो आए थे यूनेस्को वाले, उन्होंने यहाँ काम शुरू किया इसकी रेनोवेशन, तो हम भी वहाँ जाते थे देखने, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे मस्जिद है।
हालांकि मस्जिद के पुनर्निर्माण के बाद कुछ शहरी भी इसकी देखरेख के लिए ज्यादा चौकस हुए हैं, लेकिन हालात फिर भी बहुत बेहतर नहीं है। बाबा बलवंत मुझसे कहते हैं कि कम से कम नलके का पानी तो लग जाए मस्जिद में, वरना छोटे छोटे कामों में भी तकलीफ उठानी पड़ती है। अभी जो दौर जारी है उसमें मस्जिद के इस सेवादार की ख्वाहिश को पूरी करने के साथ साथ इस मस्जिद की हिफाजत भी जोर शोर से की जानी चाहिए। ये मस्जिद हिंदुस्तान की मिलीजुली तहजीब का हिस्सा है। फैसल मोहम्मद अली, श्री हरगोबिंदपुर, पंजाब।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं
इंदु पांडे।
इंदु पांडे
का भी नमस्कार।
हमेशा की तरह उनका भी नमस्कार और उनके हाथ में जो चिट्ठियां हैं वो हमें बताएंगे कि हमने पिछले हफ्ते जो कुछ किया वो हमारे श्रोताओं को पसंद आया या पसंद नहीं आया, आलोचना की या तारीफ की।
तो पहली चिट्ठी लेते हैं नीलमणि ठाकुर की, बिहार से इन्होंने भेजी है, ग्राम दौरमा से। लिखते हैं कि विवेचना सुनने के पश्चात मेरी इस धारणा की पुष्टि हो गई कि बीबीसी का स्तर वैसा ही है जैसा कि वो इंद्रधनुष अथवा हमसे पूछिए आदि कार्यक्रमों के प्रसारणों के समय हुआ करता था।
इसके लिए तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आपने ये कहा है और हम पर भरोसा आपने बनाए रखा। इंद्रधनुष और हमसे पूछिए कार्यक्रम जब होते थे तब जो गुणवत्ता होती थी आज भी वैसी ही बनी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ लिखते हैं।
आगे लिखते हैं कि प्रसारण की क्वालिटी के संबंध में मची हाय तोबा के बीच भी आपके सभी प्रसारण लगभग सही सही सुन पा रहा हूँ, संभवतः अपने पुराने रेडियो सेट के कारण, जो वफादारी की प्रेरणा भी देता है।
देखिए, अब हमारे पास कहीं श्रोताओं से ये डिमांड ना आने लगे कि जो रेडियो सेट इनके पास है वही रेडियो सेट हमको भी चाहिए, वो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मेरे कानों में घंटियों की तरह बज रही है इनकी चिट्ठी। नाम दोबारा से बताइए और गांव का नाम भी।
इनका नाम है नीलमणि ठाकुर, गांव दौरमा बिहार से लिखते हैं।
दौरमा बिहार से नीलमणि ठाकुर जी, आप साफ साफ सुन पाते हैं, बड़े सुकून की बात है। जो श्रोता नहीं सुन पाते हैं उनको मशक्कत करनी पड़ती है, उनके लिए जरूर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मोबाइल फोन और अब तो फेसबुक पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं।
और ये हमारे पास मेल आया है इंदर सिंह धामी, नैनी सैनी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से। लिखते हैं कि आज के दिन बीबीसी से अच्छा कोई नहीं, आप बेहतरीन रिपोर्टर हैं, आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, लेकिन क्या आर्थिक समस्या की वजह से आपकी टीम में अब नौसिखिए? आप यदि कोई अच्छा शब्द सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, आपने ऐसे लोगों को रखना शुरू कर दिया है।
नौसिखियों को रखना शुरू कर दिया है। देखिए मैं धामी साहब आपको क्या बताऊं, पहली बार जब मुझे रेडियो स्टूडियो में जाना पड़ा तो मेरे दिल की धड़कन ऐसी बढ़ रही थी और माइक्रोफोन के सामने जब मैं बैठा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं। तो नौसिखिए तो हम सभी होते हैं, आप भी हम भी, जो नए लोग आएंगे वो नौसिखिए होंगे, उनमें थोड़ा कच्चापन होगा, थोड़ी गलतियां भी करेंगे, लेकिन बीबीसी के रंग में तो एक बार जैसे आप हम रंगे हैं सब रंग जाएंगे।
और हमारे पास ये दूसरा मेल है जसदेव सिंह का, सिंसिनवार विलेज गोहावली, पोस्ट अष्टावन, तहसील कुम्हेर, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, राजस्थान से।
जी, क्या कहते हैं?
लिखते हैं कि बीबीसी के नियमित श्रोता हैं और बीबीसी से इनकी शिकायत है कि वैसे तो बीबीसी की निष्पक्षता पर कोई इनको संदेह नहीं है, लेकिन इंडिया बोल कार्यक्रम में ज्यादातर बिहार से श्रोताओं को शामिल किया जाता है, तो
इनकी शिकायत हो सकता है ये सही कह रहे हों, क्योंकि हमारे कंट्रोल में होती हैं। जब दो नंबर हैं 1811-7000, 1800-102-7001, आप कहां से लगाते हैं हमें मालूम नहीं होता। अगर बिहार के श्रोताओं का ज्यादा लग रहा है, कई एक बार कहा जाता था कि बाड़मेर के श्रोताओं का फोन बहुत ज्यादा लग रहा है, तब हमसे जवाब देते नहीं बनता था, तो आप कोशिश कीजिए, नहीं तो अपना नंबर भेजिए हमें, हम कोशिश करेंगे कि आपको कार्यक्रम में शामिल किया जाए, कोशिश करेंगे, बहुत पक्का भरोसा तो मैं नहीं दिला पाऊंगा अभी।
और ये हैं रफीक इब्राहिम परकार, रत्नागिरी महाराष्ट्र से। शुक्रवार की फूलन देवी पर विवेचना बहुत पसंद आई, पर ये बात क्यों नहीं बताई गई कि वो समाजवादी पार्टी की सांसद चुनी गई थी?
जी, ये बात नहीं बताई गई क्योंकि उनकी जब मृत्यु हुई थी तब वो सांसद थीं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं कि शायद हर पहलू नहीं आ पाए कार्यक्रम में। लेकिन जो और भी तारीफ के पत्र आए हैं इस विवेचना करके,
बहुत सारे पत्र आए हैं जिसमें सुरेंद्र नाथ सिंह हैं आसाम से, और इसके साथ साथ इंद्र सिंह धामी हैं जिनकी चिट्ठी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, उत्तराखंड से। दयाराम है गांव सोहगाड़ा, शिवपुर जिला गढ़वा, झारखंड से। नरसिंह है मेरठ से। और इसके अलावा सबने यही कहा है कि रेहान फजल ने जो विवेचना की थी बहुत अच्छी लगी। प्रमोद सबरवाल है त्रिकुटा नगर जम्मू से।
अच्छा भाई, मैं अब क्या कहें श्रोताओं से, ये कह सकता हूँ कि रेहान फजल को सामने बैठा करके उनसे ही जवाब दिलवाए जाए अब आपकी चिट्ठियों के, क्योंकि उनकी विवेचना की इतनी तारीफ होती है, उनसे ही पूछा जाए कि ये विवेचना आप कैसे करते हैं, हमें भी बताएं और श्रोता को भी बताएं।
बहुत अच्छा विचार है आपका।
जी, और कोई चिट्ठी आपके
पास? और नई मंसारी है, झारखंड पुलिस में है ये, हजारीबाग झारखंड से। लिखते हैं कि इनको भी बहुत अच्छी लगी और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सप्ताह में तीन दिन विवेचना प्रसारित की जाए।
सप्ताह में तीन दिन तो बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल बहुत होगा, हम इसका भरोसा भी नहीं दिला सकते हैं। लेकिन आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और बहुत सारे जो कंपटीशन देने वाले छात्र होते हैं वो भी कार्यक्रम सुनते हैं
जी।
तो इसी तरह आप कार्यक्रम सुनते रहिए, हमें लिखते रहिए। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया के परमाणु विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की अपील की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।